हरे कृष्णा। भगवद्गीत श्रीमद् भगवद्गीता यथारूप अध्याय एक श्लोक क्रमांक 4, 5, 6 की हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इस चर्चा को बढ़ाने से पहले आप देखिएगा कि श्लोक क्रमांक 2 में एक शब्द आया था राजा। तो श्रील बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि राजा शब्द यहाँ पे जो दुर्योधन को संबोधित करने के लिए उपयोग किया गया है वो ये दिखाने के लिए कि दुर्योधन राजनीति में बहुत निपुण था। दुर्योधन राजा नहीं था, लेकिन राजा तो धृतराष्ट्र थे, लेकिन फिर भी क्योंकि राजनीति में निपुण था इस कारण से उसको राजा बोला गया है। अब श्लोक क्रमांक 4 को देखेगा, मेरे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष दृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन उन्हें इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वे अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। दृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरजित कुंतीभोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। श्लोक क्रमांक 5। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो इसके ऊपर श्रील बलदेव विद्याभूषण की पाद की कमेंट्री के भी हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा। श्लोक क्रमांक 4 के संबंध में आचार्य प्रश्न उठाते हैं कि मान लीजिए द्रोणाचार्य प्रश्न करते दुर्योधन से कि भाई दृष्टद्युम्न की सेना से घबराने की क्या आवश्यकता है, दृष्टद्युम्न मेरे सामने तो कोई बहुत बड़ा योद्धा है नहीं और इसकी जो सेना है वो भी हमसे कम है मात्रा में, तो इसलिए भय नहीं करना चाहिए। लेकिन वो कह रहे नहीं नहीं देखिए ऐसा नहीं है, यहाँ पे महा इशु आसह, महान धनुर्धर भी हैं इसमें, इस जो सेना है जो पांडवों की, अत्र इसमें केवल सेना ही सेना है ऐसा नहीं है, बल्कि सेना के साथ साथ उसमें बहुत बड़े बड़े धनुर्धर भी हैं जिनकी शक्ति भीम और अर्जुन के समान ही है। भीम और अर्जुन की शक्ति को द्रोणाचार्य भी जानते थे और दुर्योधन भी जानते थे अच्छी प्रकार से, तो वो कह रहे हैं कि इनकी शक्ति भीम अर्जुन के समान ही है, तो हम समझ सकते हैं कि कितना शक्तिशाली है। अगर आप लोगों को पता हो जब अर्जुन बृहन्नला के रूप में विराट नगर में एक साल के लिए छुपे हुए रूप में रह रहे थे, तो जब एक साल की समाप्ति हो गई थी तो वहाँ पे कुरुओं ने विराट नरेश की गायों को गौओं को अपहरण कर लिया था। तो कुरुओं की जो सेना थी वो उसका युद्ध होने वाला था विराट से, और दूसरी तरफ एक दूसरे मत्स्य देश के राजा ने उन पर अटैक किया था। तो विराट नरेश उधर युद्ध करने चले गए थे और अपने बेटे को उत्तम को इधर भेजा, तो उत्तम ने बोला था कि मैं युद्ध तो करूँगा लेकिन मेरे पास कोई क्या कह सकते हैं रथ संचालन के लिए नहीं, रथ संचालन के लिए कोई नहीं है, मेरे पास सारथी नहीं है। तो वृहन्नला के रूप में अर्जुन सारथी बन के गए थे और जब देखा उत्तम ने उनको कुरुओं की सेना को तो घबरा गए और युद्ध छोड़ के भागने लगे। तो अर्जुन उनको बोले कि नहीं आप अब सारथी बनो और मैं युद्ध करूंगा, और उन्होंने फिर अस्त्र लिए जो उनके पेड़ के पास मैंने छुपा के रखे थे एक साल पहले, और उससे अकेले ही सारे कौरवों के पक्ष के योद्धा थे उनको हरा दिया था। तो अब आप समझ सकते हैं कि और द्रोणाचार्य उस युद्ध में थे, तो द्रोणाचार्य और इवन भीष्म पितामह थे, तो दुर्योधन इस बात से याद दिला रहा है कि भीम और अर्जुन के समान हैं सारे योद्धा, तो इसलिए इनकी सेना को हमें कम नहीं आंकना चाहिए। तो इस कारण से वो अन्य सभी लोगों के बारे में बता रहे हैं, और इस प्रकार से हम देख रहे राजनीति के द्वारा वो द्रोणाचार्य को प्रेरणा दे रहे हैं कि इस समय अब युद्ध के समय आपको लीनियंसी यानी कि ढील नहीं दिखानी चाहिए। युयुधान जो है वो सात्विकी हैं, सात्विकी की पर्सनल ट्रेनिंग युद्ध कौशल जो है वो अर्जुन ने उनको स्वयं सिखाया था, अर्जुन के वो प्रिय शिष्य थे और अर्जुन के समान ही थे। एक्चुअली इस युद्ध से पहले भी वो कभी भी युद्ध में हारे नहीं थे सात्यकी। इसमें सात्यकी से पराजिता लिखा है क्या, मैं देखना चाहता हूँ इसमें। हाँ ऐसा एक जगह आएगा कि सात्यकी से पराजिता। तो बहुत बहुत ही शक्तिशाली ये थे सात्यकी युधाना। आगे भी आएगा सात्यकी से पराजिता, इस श्लोक आगे मेरे ख्याल से आएगा। तो ये बहुत ही शक्तिशाली थे और साथ साथ विराट, द्रुपद ये सब महारथी थे। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि महारथी का मतलब क्या होता है। और चेकितान, काशीराज आदि बहुत ही वीरवान, मतलब बहुत ही शौर्यशाली थे, शौर्यवान थे। पुरजित, कुंती भोज और शैब जो थे ये सभी लोगों में बड़े श्रेष्ठ थे और युद्धमान्य और उत्तम मौज बहुत ही वीरवान शक्तिशाली थे। मतलब कहने का अर्थ है सभी बहुत शक्तिशाली हैं। सौभद्रा का अर्थ है सुभद्रा के पुत्र यानी अभिमन्यु, और द्रौपदी का अर्थ है द्रौपदी के पांच पांडवों से जो पांच पुत्र उत्पन्न हुए थे, उनका नाम था प्रतिविंद्य, शूरसेना, श्रुतकीर्ति, शतानिक और श्रुतकर्मा। तो इससे वो भी बड़े शक्तिशाली थे, भले ही वो बहुत यंग थे लेकिन बहुत शक्तिशाली थे। और चा से अर्थ है कि घटोत्कच इत्यादि भी थे। तो पांडव लोग इतने महान थे कि उनको अलग से गिनाने की जरूरत नहीं थी। पांडव तो थे ही युद्ध करने के लिए, तो पांडव इतने शक्तिशाली थे कि उनका नाम नहीं गिना जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि सारे लोग महारथी हैं। तो ये जितने भी 17 लोगों को नाम गिनाए गए हैं वो सब महारथी हैं। और महारथियों के बारे में बताया जा रहा है कि एक महारथी जो 10,000 धनुषधारियों से युद्ध कर ले, जो कि शस्त्रों में और शास्त्रों में निपुण हो, उसको महारथी कहते हैं। अतिरथी का मतलब है जो व्यक्ति कितने भी असंख्य सेनाओं से युद्ध कर सके वो अतिरथी कहलाता है। रथी का अर्थ होता है जो एक व्यक्ति से युद्ध करे, और अर्थरथी का अर्थ होता है जो अकेले एक व्यक्ति से भी युद्ध ना कर सके। तो इस प्रकार से सबके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हम लोगों को ये को अपने जो युद्ध का है उसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। इससे पहले हो सकता है कि आपने धृष्टद्युम्न को युद्ध कौशल सिखा दिया, इवन अर्जुन को भी सिखा दिया, आज अब हमको दोबारा इस युद्ध में ढील नहीं देनी चाहिए पुराना संबंध देख करके। श्लोक क्रमांक 7, अस्माकं तु विशिष्टाये तान्नि बोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। तो अब ये सोच रहे थे, ऐसा तो नहीं है कि द्रोण जो है वो घबरा गए हों, तो इसलिए जो दुर्योधन है वो यहाँ पे अपने जो सेना है उसके उसकी शक्ति को बता रहे हैं कि द्रोण, हो सकता हो द्रोणाचार्य कहें कि अरे भाई पांडवों की जो सेना है ये तो बड़ी भयावह लग रही है। तो अपने गर्व को प्रदर्शित करने के लिए दुर्योधन इस प्रकार से बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो नायक हैं, जो हमारे जो कह सकते हैं हमारे जो सेना है, इसमें बहुत स्पेशल लोग योद्धा हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास कोई शक्ति कम है। मैं उनके बारे में बताने के लिए उनका नाम लेके आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप अपने प्रेम के कारण पांडवों से युद्ध ना भी करें तो भी भीष्म और अधिक और अन्य लोग हैं जो कि युद्ध करेंगे। तो इस प्रकार से द्रोणाचार्य जी के क्रोध को जागृत करने, वो जान रहे हैं कि द्रोणाचार्य कर्तव्य परायण हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि मान लीजिए आप युद्ध ना करें ठीक प्रकार से प्रेम, अपने प्रेम के कारण पांडवों के प्रति, तो अन्य लोग भी हैं जो कि युद्ध करने के लिए बड़े शक्तिशाली हैं और उत्साहित हैं। तो नाम गिना रहे हैं, भवान सबसे बड़ा चतुर है व्यक्ति, पहले बोलता है आप, भवान, भीष्मश्च भीष्म, कर्णश्च कृपश्च समितंजय, अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे। ये सत्य बात है कि द्रोणाचार्य जी को कोई हरा नहीं पाया था। इसी प्रकार से जितने लोग भी हैं, कर्ण तो एक बार हार गए थे, लेकिन भीष्म और द्रोणाचार्य तो कभी भी हारे नहीं थे। तो इस प्रकार से ये लोग बड़े ही शक्तिशाली वीर थे। तात्पर्य, दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों को का उल्लेख करता है जो सदैव विजय होती रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, और सौमदत्ती ये भूरिश्रवा बाहलिकों के राजा के पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य की को ब्याही थी। तो इन सब के पीछे बहुत सारी कथाएं हैं, उसको हम अब नहीं ले रहे हैं क्योंकि फिर तो कथा का बहुत विस्तार हो जाएगा। जो यहाँ पे कोई मैसेज है तो उसको हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसमें तो समझ में आ रहा है, खाली नाम बताए गए हैं। 90 को देखेंगे। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। जहां तक अन्यों का यथा जयद्रथ कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। तो एक इंपॉर्टेंट बात है यहां पे कि एक इंटरेस्टिंग चीज है, यहां पे शब्द आ रहा है मदर्थे त्यक्त जीविता, यानी कि इतना प्रेम है इन लोगों को जो आपके दुर्योधन के साथ में पक्ष में जो लोग थे उनको कह इस शब्द से इंगित हो रहा है। इतना प्रेम था कि वो अपना जान भी निछावर करने के लिए तैयार थे दुर्योधन के पक्ष में लड़ने के लिए। तो दुर्योधन कह रहे हैं कि मेरी जो युद्ध में विजय है वो तो सुनिश्चित है क्योंकि ये लोग मेरे प्रति बहुत प्रेम करते हैं, इनके पास बहुत शक्ति है, बहुत ही शौर्यवान है और साथ साथ ये युद्ध कला में बड़े निपुण हैं। तो ये सब बातें इंगित हो रही हैं इन सब शब्दों से। श्लोक क्रमांक 10। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्युदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी शक्ति अपरिमेय है और अब हम पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीष्म से ईर्ष्या करता था क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। एक इंटरेस्टिंग चीज है कि मान लीजिए द्रोणाचार्य कहें कि भाई हमें तो लग रहा है कि दोनों तरफ के जो पक्ष हैं उनकी शक्ति समान रूप से है, तो आप क्यों बोल रहे हैं कि आप जीतोगे? क्योंकि इस पहले श्लोक में लिख रहा है कि इंगित हो रहा था सर्वे युद्ध विशारदा से कि हम सब लोग युद्ध में विशारद हैं और शस्त्रों से युक्त हैं और निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे, तो कहेंगे भाई ऐसा क्यों कह रहे हो? तो उसका कारण बता रहे हैं यहाँ पे। मान लीजिए द्रोणाचार्य जी पूछते हैं ऐसा क्यों कह रहे हो कि हमारी युद्ध निश्चित है, तो कह रहे हैं कि हमारे पास पहली बात तो अधिक सेना है क्योंकि 11 अक्षौहिणी कौरवों के पास थी और 7 अक्षौहिणी पांडवों के पास थी, और उसमें भी 1 अक्षौहिणी नारायणी सेना थी भगवान श्री कृष्ण की, द्वारका से जो आई थी। दूसरा क्या है, हमारी शक्ति है अपर्याप्तम। यहाँ पे अपर्याप्तम का मतलब अर्थ ले रहे हैं कि कोई उसका कोई गणना ही नहीं कितनी शक्ति है, और पर्याप्तम मतलब जो पांडवों के संबंध में यूज किया जा रहा है पर्याप्तम मतलब कि है लेकिन थोड़ी मात्रा में, छोटी है। अच्छा, भीष्म जो हैं वो न सिर्फ बुद्धिमान हैं, अनुभवी हैं युद्ध कौशल में और साथ साथ अतिरथ हैं, यानी कि कितने भी योद्धाओं से वो अकेले युद्ध कर सकते थे। और जो पांडवों की सेना है वो कम है शक्ति में और साथ ही साथ भीम के द्वारा रक्षित है, और भीम के प्रति ईर्ष्या होने के कारण वो भीम को एक अर्धरथी भी नहीं मानते थे। वो सोच रहा था कि भीम तो एक योद्धा से भी अकेले युद्ध नहीं कर सकता, इस प्रकार से भीम को नीचा दिखाने के लिए वो बोल रहे थे। अब आप लोग बड़ी अद्भुत चीज देखेंगे, इस सारे कथा कथन कथन उपकथन में वो भगवान श्री कृष्ण को जोड़ ही नहीं रहा है। ये एक बद्ध आत्मा का लक्षण दिखाता है। बद्ध आत्मा अपने प्रयासों और अपने संसाधन पे तो बहुत विश्वास रखती है, लेकिन भगवान जो कि शांति से बैठे हैं परमात्मा के रूप में और जिनके कारण ही पूरा जगत चल रहा है, उनके सैंक्शन या उनकी विल के बारे में कि वह उनकी इच्छा क्या है, जो भी होना है अंततो गत्वा उनकी इच्छा पे ही निर्भर करता है, तो उनके बारे में वो नहीं सोचता। तो यहाँ वो सारे तुलना कर रहे हैं कि भाई पांडवों के पास ये लोग हैं, इतनी सेना है, हमारे पास ये लोग हैं, इतनी सेना है, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण हैं जो उनका हित करने के लिए आए हुए हैं। बहुत ही अद्भुत है बात। और इस चीज को दुर्योधन पहले भी नहीं समझ पाए थे। जब युद्ध होने वाला था तो सब लोग अपने मित्रों को जोड़ रहे थे, तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही गए और भगवान द्वारका में विश्राम कर रहे थे। और दुर्योधन का भगवान श्री कृष्ण से संबंधी का रिश्ता है, उनकी बेटी का विवाह सांब यानी कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के संग हुआ था। दुर्योधन की बेटी का नाम है लक्ष्मणा और सांब ने उनका अपहरण करके उनसे शादी करी थी। ये लंबी कथा है, लेकिन इस प्रकार से दुर्योधन और भगवान श्री कृष्ण में संबंधी का रिश्ता है। और अर्जुन तो मित्र तो है ही भगवान के और अपने को दास मानते हैं कृष्ण का। तो अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास खड़े हो गए और भगवान श्री कृष्ण के सिरहाने के पास दुर्योधन जी थे। तो भगवान की जैसे ही आंख खोली तो उन्हें अर्जुन को देखा, बोले आप कैसे आए, क्या चाहिए आपको मुझसे। तो अर्जुन ने कहा युद्ध होने वाला है और युद्ध में हमें आपकी सहायता चाहिए। तो दुर्योधन बोले नहीं मैं भी आया हूँ द्वारकाधीश। कहते हैं अच्छा आप भी आए, बहुत अच्छी बात है, क्या चाहिए। तो कहते हैं यही मेरा प्रस्ताव है कि आप हमारे युद्ध में मदद करें। तो भगवान ने कहा युद्ध तो संबंधियों के बीच में है, तो मैं तो इसमें भाग नहीं लूंगा। आप लोग चुनाव कर सकते हैं, एक तरफ मेरी एक अक्षौहिणी नारायणी सेना होगी और दूसरी तरफ मैं अकेला रहूंगा, निहत्ता, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन को पहले भगवान ने कहा अर्जुन को मैंने पहले देखा था इसलिए, और अर्जुन छोटे हैं, इनको हम पहले चुनाव करने का मौका देते हैं। तो दुर्योधन को बड़ा दुख दुख लगने लगा। तो अर्जुन ने कहा भगवान मैं आपको चाहता हूँ। तो दुर्योधन ने कहा ठीक है बहुत अच्छी बात है, ऐसा कर सकते हैं, मैं सेना से संतुष्ट हूँ। उस समय भी व्यक्ति समझ नहीं पा रहे थे, दुर्योधन जैसे व्यक्ति, भौतिकतावादी व्यक्ति, कि भगवान का हमारी तरफ होना यानी कि अनंत शक्ति हमारे पीछे होना, छोटी मोटी सेना से क्या लाभ होने वाला है। और इसी का परिणाम दुर्योधन ने भुगता। तो बाद में जब भगवान ने अर्जुन से पूछा कि आपको आपको आपका बुद्धि ठीक है, मैं तो जब युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो फिर आपने मुझे क्यों चुना। तो अर्जुन ने बोला कि भगवान मेरी इच्छा थी कि मैं अपने जीवन की बागडोर आपके हाथ में दे दूं। भगवान ने कहा कुछ भी हो जाए, आप लोगों के युद्ध में हार कभी नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से जब हमारा शरणागति का भाव कृष्ण के चरण में होता है तो भगवान की असीम अनुकंपा और संपूर्ण प्रोटेक्शन, संपूर्ण कह सकते हैं आशीर्वाद भगवान का हमारे पर होता है। और इसी के उद्देश्य के लिए भगवद गीता को भगवान ने बोला है, कैसे जैसे अर्जुन ने भगवान की शरण ली, ऐसे हम लोग भी भगवान की शरण लेने के लिए प्रोत्साहित हों। तो आगे के श्लोक को हम चर्चा आगे करेंगे। हरे कृष्णा।